ओम शांति। शास्त्रों में तुलाधार वैश्य की कथा है। तुलाधार अर्थात जो तौलते रहता था, वजन करते रहता था। एक योगी बहुत तपस्या करता है और तपस्या इतनी तीव्र हो जाती है कि जटाएं आ जाती है उसको, और उन जटाओं में एक पक्षी अपना घोंसला बना देता है। और जब वो तपस्वी यह देखता है कि मेरी जटाओं पर एक पक्षी ने घोंसला बना दिया है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। एक सूक्ष्म अभिमान उसके भीतर प्रवेश कर जाता है और वो मन ही मन लोगों से कहता है, देखो मेरी सिद्धि, मेरी तपश्चर्या, मेरे सिर पर पक्षी ने घोंसला बनाया। अपनी तपश्चर्या को छोड़ वो पहाड़ों से नीचे उतरता है और उसे एक सन्यासी मिलता है, और उस सन्यासी से वो योगी कहता है, क्या तुमने मेरी जटाओं को देखा? यहाँ पर एक पक्षी ने घोंसला बनाया। वो सन्यासी पूछता है, वो पक्षी कहाँ है? तो पक्षी यहीं कहीं होगा इर्द गिर्द, अभी यहाँ नहीं है। वो सन्यासी कहता है, उस पक्षी को बुलाओ। कैसे? मैं नहीं बुला सकता, मैं कैसे बुलाऊं उस पक्षी को? सन्यासी कहता है, इसका अर्थ तुम्हारी साधना पूर्ण है, तुम्हें अभी अपनी साधना पूर्ण करना बाकी है। तुम्हें काम करो, तुलाधार वैश्य के पास जाओ। वो योगी सोचता है, वैश्य? मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य बनिया के पास जाऊं, एक दुकानदार के पास? फिर भी पूछता है, कहाँ है वो? वो योगी, वो सन्यासी कहता है, काशी में। वो अगर बुलाए तो वो पक्षी तुरंत आ जाएगा। वो योगी सोचने लगता है, मैं और ब्राह्मण, योगी तपस्वी सन्यासी, एक वैश्य के पास जाऊं और उससे ज्ञान सीखूं? फिर भी अनमने मन से वो काशी आता है। चारों तरफ भीड़ भाड़, चारों तरफ लोग ही लोग, शोरगुल। वो मन ही सोचता है, मन ही मन, मैंने इतने वर्षों तक पहाड़ों पर एकांत में और मौन में शांति में तपश्चर्या की है, तब मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई। क्या मुझसे भी बड़ा कोई योगी है और वो यहां इस भीड़ में रहता है, वो भी शहर के बीच? वो उस वैश्य को ढूंढ लेता है और देखता है वो बनिया, वो दुकानदार दुकान में बैठा है और उसके कंधे पर वही पक्षी है। वो योगी जाता है और उससे पूछता है, आपने इस पक्षी को कैसे बुलाया? वो वैश्य कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई साधना नहीं की, सुबह से लेकर रात तक मैं सामान को तौलता हूं, और जब कांटा बीच में आ जाता है तो लोगों को देता हूं बिजनेस, परंतु ये तौलते तौलते ही मेरे भीतर कुछ हो गया। जैसे कांटा यहां स्थिर हो गया, वैसे मेरे भीतर का भी कोई कांटा स्थिर हो गया, और यही मेरी साधना थी। सुख हो दुख हो समान, जय हो पराजय हो समान, पैसा हो पैसा ना हो समान, स्वस्थ हो बीमार हो समान, हानि लाभ निंदा स्तुति जय पराजय समता। बाहर का वजन तौलते तौलते मेरे भीतर का एक कांटा स्थिर हो गया, चेतना स्थिर हो गई। शायद इसीलिए लोगों ने उसका नाम ही तुलाधर रख दिया, जो तोलने वाला है। उसने कहा, मैंने कोई तपश्चर्या नहीं की, परंतु अपने आप ही सब हो गया। वो योगी उसके चरणों में गिर पड़ता है। जिस शांति को उसने हिमालय की पहाड़ी पर पाया था, वो शांति कितनी अस्थिर शांति थी, जो कोई दूसरा कभी भी चुरा सकता है। और ये व्यक्ति इसी संसार में रहते हुए, इसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी चेतना की उस परम उच्च अवस्था को पा गया। कहां हम हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, भीतर चेतना कहां खड़ी है। कोई हिमालय की चोटी पर है फिर भी बाजार में हो सकता है, और कोई यहां मधुबन में रहते हुए भी मन संसार के बाजार में भटकता हुआ रह सकता है। तो साधना आंतरिक है, सुबह की अव्यक्तवाणी, दीदी का उदाहरण, दादी का उदाहरण, ब्रह्मा का उदाहरण, मम्मा का उदाहरण, ये सब लोग यहीं थे, इसी संसार में थे, यहीं इसी भीड़ में, इसी वातावरण में, भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कारों के लोगों के बीच, फिर भी भीतर सूक्ष्म साधना करते रहे। भीतर जैसे एक धुन थी, एक सूक्ष्म इनविजिबल अदृश्य, और इसलिए इतनी ऊंची अवस्था को उन्होंने पाया। ऐसी धुन, ऐसी साधना ऐसी स्थिति जो इस संसार की माया का हम पर कोई प्रभाव ही ना हो, कोई आत्मा, कोई भी व्यक्ति हमारी चेतना में छाया हुआ ना हो, और मन एक और केवल एक शिव बाबा से जुड़ा हो, उस भगवान से गहरा रिश्ता, आंखें कहीं भी ना डूबे, न वैभव में न पैसों में, न वस्तुओं में, न इमारतों में, न साधनों में, न किसी में, कोई नहीं, केवल फॉलो फादर। सीखना सबसे है, परंतु फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, दीदी दादी दादा, सबसे सीखना है, परंतु याद केवल एक। और यही पाठ हम कब से सीखते आ रहे हैं, इसी को भीतर ही भीतर पक्का करना। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने, पहले आप बताएंगे फिर हम चर्चा करेंगे। संस्कार को क्या करो, जलाओ, पर कैसे, ज्वालामुखी योग कैसे, परमधाम में बिंदु स्वरूप, तो संस्कारों को केवल दबाना नहीं, सजाना नहीं, समझौता नहीं करना है, छिपाना नहीं है, क्या करना है, जला देना है, मारना नहीं है, केवल मारेंगे तो फिर से जीवित होंगे। दुख का यदि संस्कार बना है, दुखी होने का संस्कार, उदास होने का संस्कार, ऊपर से थोपा जा सकता है बहुत सारी पॉइंट्स खुशी की, पर वो संस्कार केवल दब गया है, उसको अवसर मिलते ही फिर वापस आएगा, इसलिए चलाओ। वो कैसे, वो हम देखेंगे। और क्या कहा मम्मा, क्या बाबा ने कहा और किया, कहना और करना, और दीदी का क्या, अब घर जाना, और दादी का क्या, कर्मातीत, और पांडवों का विजयी, और चेहरे, चलन, दृष्टि, वृत्ति, नयन, मस्तक, संबंध, संपर्क, वृत्ति, सबसे क्या करो, बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप का परिचय दो, साक्षात्कार कराओ। और क्या कहा, सदा बाप को कंबाइंड, मर्ज्ड, अकेला रखोगे तो क्या होगा, माया को सबसे अच्छा क्या पसंद है, अकेला मन, माया को क्या पसंद है, अकेला मन, खाली मन, खाली मन खाली कमरे जैसा है, पुराने किराएदार कभी भी आ सकते हैं। और क्या कहा, मधुबन अर्थात बाबा का घर, और मधुबन निवासियों का क्या, तीन रूपों से जमा करेंगे क्या, स्वयं का पुरुषार्थ, दूसरों की सेवा, और तीसरा यज्ञ सेवा। अच्छा, और किसके नोट्स रखने हैं, सहयोग के, कहां पर, तो जेब तो भाइयों के पास है, पर्स में रखना है सहयोग के नोट्स, और कितने रखने हैं, भर के रखना है, और क्या नहीं रखना है, गलतियां, दूसरों की गलतियों की डायरी, नोट्स नहीं रखने, अगर नोट तुम रखोगे सहयोग के तो क्या फायदा होगा? दुआओं की। बाबा जिसको सहयोग देंगे वो, और क्या है मुरली में? मनसा सेवा। सुख शांति की किरणें फैलाओ, और आलस का क्या करो? खत्म करो। कैसे? उल्लास में रहो या उल्लास से कुछ करो, तीव्र पुरुषार्थी करो। उल्लास में क्या करो? पुरुषार्थ कर्म उल्लास से करना है। उल्लास से क्या करो? जो करना है अभी करो, नहीं क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ कमाई। क्या करो? कमाई। तीव्र पुरुषार्थियों की घड़ी में हमेशा एक ही समय है। कौन सा? अभी। केवल एक ही समय है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे नहीं है। समय कौन सा है? एक ही, अभी, नाउ। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे नहीं, नाउ। और क्या कहा? बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को बांध लिया। बच्चों के प्यार के डैश ने प्यार के सागर को बांध लिया। प्यार के तार ने, और अपने भाग्य को बढ़ाना नहीं, अपने भाग्य को प्रत्यक्ष करो। और बाबा 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 क्या करते रहना है? कब करना है? गिनती करो बाबा, कितनी बार आया कि गया, आया ऐसा लिखा है। फिर क्या करो? बाबा बाबा की गिनती करो, बाबा एक, बाबा दो, बाबा तीन। अच्छा, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है कि कितनी बार बाबा बाबा कहा मुरली। और चलन से, चेहरे से, जैसे बाबा के नैनों में समाया हुआ था बाप, वैसे तुम भी बाप को प्रत्यक्ष करो। और क्या था? देखना, सोचना, करना, तीन। सोचना और करना एक, और मधुबन वासी का क्या? मीटिंग। और जो निमित्त है उनकी जिम्मेदारी है। और क्या था? हो गया मधुबन वासी। हाँ, पहुंचा देना है। और एडवांस, एडवांस में बधाई। और बाबा मधुबन के सिवा कहीं नहीं आता है। और प्यार के सब्जेक्ट में बाप दादा बच्चों को आगे रखते हैं। और प्यार में नंबर वार है, प्यार बाबा के पास नंबर वार पहुंचता है। और फिनिश्ड हो गई क्या 4 पेज की मुरली? पवित्रता क्या है? क्षमा। वो कैसी रहे? अचल। और श्रीमत में चलने से एक्स्ट्रा मदद की पुण्य। और दूसरे अनुभव करेगी, ये भगवान के बच्चे है, ये भगवान के स्टूडेंट है, भगवान को केवल फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं। बात से भाप नजर आए और साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। मधुबन वासियों को नशा है और मधुबन के बाबा मधुबन में आते हैं और ज्वालामुखी युग और योग युक्त और निमित्तों को बता दिया इधर। और बताओ, अक्षय योनि सेना के सामने भी और दुनिया के सामने भी पांडवों की विजय है। पांडव अर्थात पहले उन्हें पांडु पुत्र कहा जाता था, पर जब देखा कि ये सब में एकता है तो भीष्म ने फिर अनाउंस किया था कि आज से ये पांडव पुत्र नहीं पांडव कहलाएंगे, क्योंकि पांडव अर्थात एक। और सकाश को क्या करो, पावरफुल, और किरणें क्या रूरियान में जितना चाहते उतना है वो नहीं पाता, ऐसा पॉइंट नहीं है। कुछ और है, और किसके सामने माया आ नहीं सकती, समर्थ आत्माओं के सामने माया आ नहीं। समर्थ कैसे बनेंगे, स्मृति से। कौन सी स्मृति, पवित्रता की स्मृति, पवित्रता की स्मृति। स्मृति आते ही क्या होता है, परिवर्तन। कोई एक राजा था और उसके इकलौती संतान थी, उस बेटे से भूल हो जाती है, राजा उसे अपने राज्य से निकाल देता है। कई वर्ष बीत जाते हैं, लगभग 20 वर्ष, राजा मरण शैया पर है, उसे अपने बेटे की याद आती है, कोई और वारिस नहीं है, राज्य कौन संभालेगा। मंत्री से कहता है जाओ, जाकर उसको लेके आओ, उससे कहना मैं क्षमा कर दिया, क्षमा तो दूर, अब कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मरणासन्न है, जो भी है जैसा भी है अपना खून है, बेटे को ले आओ। मंत्री जाते हैं, बेटे को ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, नगर नगर, कहीं नहीं मिलता है, उसकी कोई एक निशानी है, कोई तिल या कुछ। और अचानक एक दिन मंत्री देखता है 20 वर्ष बीत चुके हैं, वो बेटा भीख मांग रहा है, फटेहाल है, हाथ में भिक्षा पात्र है, नंगे पाँव, फटे वस्त्र, दयनीय अवस्था है। इतने वर्ष वो बेटा भटकता रहा, उसे कुछ भी नहीं मिला, भूल ही चुका था कि मैं किसी राजवंश से हूँ, भूल ही गया था कि मैं भी राजा की संतान हूँ, सम्राट बनने वाला हूँ, कुछ याद नहीं, भिक्षा मांग रहा है, दर बदर ठोकर खा रहा है। और अचानक वो मंत्री सामने आता है, चरणों में झुकता है और कहता है आपके पिता आपको बुला रहे हैं। जैसे ही वो बेटा उस मंत्री को देखता है, बीच में 20 साल का फासला है, वो बेटा अपना भिक्षा पात्र फेंक देता है, एकदम उसकी चाल ढाल बदल जाती है, कहता है मेरे लिए वस्त्र लाओ, कहाँ है, मेरी व्यवस्था की जाए, और रथ पर बैठता है, मेरा रथ कहाँ है, अभी अभी भिखारी था, अभी अभी स्मृति बदल गई, मेरे दास दासियां कहाँ है, मेरा मुकुट कहाँ है, जैसे था ही नहीं भिखारी कभी, मेरे जूते कहाँ है, चलने का ढंग ही बदल जाता है। तो क्या हो गया, जैसे ही स्मृति आ गई तो क्या आ गई, समर्थ ही आ गई। जैसे ही स्मृति आ गई सब कुछ बदल गया, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। यहां बैठे बैठे 10 साल पहले किसी ने अपमान किया, उसकी अगर स्मृति आ जाती है, तो तुरंत व्यक्ति स्वरूप बन जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। यहां बैठे बैठे और सेवा करते करते अचानक यदि लौकिक की याद आ जाए, बेटे की बेटी की, तो आंखों से आंसू, स्मृति तुरंत स्वरूप, इमीडिएट। हमारी स्मृति में निरंतर क्या रहता है? विस्मृत होते ही, यह ज्ञान विस्मृत होते ही सारा संसार आ जाएगा, पुरानी सब यादें आ जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ है केवल एक स्मृति स्वरूप रहने का। इसके लिए मुरलियों का अध्ययन करते रहना है, पढ़ते रहना है, चिंतन करते रहना है, लिखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, क्रिएटिव राइटिंग, किसी भी तरह से स्वयं को ज्ञान में डुबो के रखना है। ज्ञान विस्मृत होते ही माया पकड़ लेगी, तुलना आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, कंपैरिजन आ जाएगा, इनको सब मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा, दुख आ जाएगा, इनके पास ज्यादा पैसे हमारे पास कम, इनका पद ज्यादा हमारा कम, इनकी सेवाएं अच्छी हमारी कम अच्छी। मधुबन वासियों को क्या कहा बाबा ने, चाहे सफाई कर रहे हो फिर भी भाग्य है। तो आज की मुरली से हम सात बातें निकालेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 7M, पहला मोहब्बत या प्यार। तो मुरली की शुरुआत किससे है? प्यार से। तुमने खींचा है, बुलाया है प्यार के सागर को। कैसे बुलाया है, कैसे खींचा है? अपने प्रेम के तार से उसको बांधा है। भगवान को तर्क से, बुद्धिमत्ता से, लॉजिक से, रीजनिंग से नहीं रिझाया जा सकता है। उसे बांधने के लिए क्या चाहिए? भावना। किसी को सारी मुरलियां याद है, वक्ता है, परंतु भगवान को क्या चाहिए? भाव, फीलिंग्स, इमोशंस, निस्वार्थ प्रेम, अगाध प्रेम, सच्चा प्रेम, गहरा प्रेम। इसलिए हमारा रिश्ता उस परमात्मा से कैसा है, उसके आधार पर सब कुछ तय होगा। क्या हम करते हैं और कब हम उठते हैं, कितना हमें अमृत वेले का महत्व है, कितना इस मधुबन का महत्व है, ये भावनाएं जब खत्म हो जाएगी तो जीवन निरस लगेगा, ये ज्ञान बोझ लगेगा, ये योग एक बंधन लगेगा, सेवाएं एक बर्डन, एक बोर्डम, इंटरेस्ट खत्म। कई आत्माएं ऐसी अवस्था में आई है जहां जीवन, ये भी नहीं कह सकते ये डिप्रेशन है, परंतु लो मूड, अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ लो मूड, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेलनकोली, मेलनकोलिया। एक होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन अलग, परंतु कोई उत्साह ही नहीं है कुछ करने का, खत्म हो गया है। क्योंकि ऐसे संग में रहे इतना समय कि जहां पर पुरुषार्थ का कोई वातावरण नहीं है, कई लंबे समय से मुरलियां छोड़ दी है अध्ययन करना, खाली सुनते हैं हो गया, ना लिखते हैं, ना नोट्स बनाते हैं, ना डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं सेवाएं, ज्ञान की चर्चा नहीं करते, साधना की चर्चा नहीं करते, ना साधना संबंधित कोई प्रश्न है। इसलिए जीवन दूसरों को देख देख कर निरस, पुरुषार्थ विहीन हो गया है, दूसरों की बातें सुन सुन कर कचरा अंदर घुस गया है। इसलिए सबसे पहली बात इस मुरली की क्या है? प्रभु प्रेम, परमात्म प्रेम। बाबा ने कहा इस प्रेम को क्या करो, डैश करो। कौन बताएगा? इमर्ज, क्या करो? इमर्ज करो, जागृत करो फिर से। दुनिया वालों के प्रेम देख लिए, क्या मिला? दुख। अपने आप से घृणा नहीं करनी है, देखना है परिणाम को, देखना है ये किया ये किया ये प्राप्त हुआ, खराब किया ये नहीं कहो, ये मिला ये परिणाम है उसका। किसी से दोस्ती की, ये परिणाम है। किसी पर विश्वास किया, धोखा देकर चला गया, ये है परिणाम। परमात्मा प्रेम, इसको छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा इसको क्या करो? इमर्ज। इमर्ज करने के लिए उस पर चर्चा चाहिए, इमर्ज करने के लिए उन लोगों का संग करना है जो डूबे हैं प्रभु प्रेम में, जिनको व्यर्थ में जरा भी रुचि नहीं है, लीस्ट इंटरेस्टेड। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, आत्माएं हैं, खेल चल रहा है, कर्मों का खेल है। किसी की निंदा हो रही है, किसी की स्तुति हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये उनके ही कर्मों का खेल है। इसलिए प्रभु प्रेम मोहब्बत, दूसरा एम मर्ज्ड या कंबाइंड। बाप के साथ कैसा रहो? कंबाइंड। दिल में कौन समाया हो? दिलाराम। ये शिक्षाएं हम कब से सुन रहे हैं सभी, इतने सालों से, फिर भी मन व्यक्तियों की तरफ जाता है, उनको याद करता है, उनके विषय में सोचता है। यही तो माया है। यहां जाऊं वहां जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं, किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। जो मिलने वाला है वो अमृत वेला, योग की शक्तिशाली स्थितियों में, बाकी सब खाली करने वाले। भरने वाला एक परमात्मा। इसलिए अपने मन को, अपने चित्त को संसार के सभी संबंधों से हटाकर, आज है कल मर जाएंगे तो क्या दुखी होते रहेंगे जीवन भर? आत्माओं ने यात्रा अपनी आगे बढ़ा दी है, वो तो चले गए, कोई भी अविनाशी नहीं है ना। आत्माओं से संबंध, व्यक्तियों से, घटनाएं घटी और चली गई, हम अभी तक सिर पर लेकर उनको चल रहे हैं। गलतियां हुई, पश्चाताप अब तक जारी है, फुल स्टॉप। कंबाइंड, कौन सा अनुभव करना है? कंबाइंड, मैं और वो साथ है। अकेले नहीं, बाहर भीड़ है परंतु व्यक्ति फिर भी अकेला है। भीतर यदि मिलन नहीं तो वो अकेलापन है। भीतर यदि उसकी याद नहीं अर्थात अकेलापन। लोग हैं, साथी है, दोस्त मित्र संबंधी सब है, सब कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, कुछ भी हो गया तो हम है, वो सब है, पर भीतर यदि प्रभु मिलन नहीं तो वह अकेलापन ही है। एक संगीतज्ञ किसी जंगल से जा रहा होता है, अचानक डाकू आते हैं, उस संगीतज्ञ के पास सोने के सिक्के हैं, उसका सब कुछ वो डाकू लूट लेते हैं और उसका वाद्य भी ले लेते हैं, वो म्यूजिशियन कहता है बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा वायलिन मुझे वापस दे दो। वो डाकू सोचते है कमाल का आदमी है, बाकी नहीं मांग रहा है, ये लकड़ी का टूटा फूटा वाद्य मांग रहा है। और हम भी इसका क्या करें, वो उस संगीतज्ञ को वो वाद्य दे देते हैं। वो संगीतज्ञ वो म्यूजिशियन झूमने लगता है, नाचने लगता है, बैठता है। डाकुओं को आश्चर्य होता है ये कैसा व्यक्ति है, और वो अपना वायलिन बजाने लगता है। जंगल है, अमावस की रात है, चारों तरफ सन्नाटा है, निर्जन वन है, और वो बजाता है ऐसी तन्मयता से कि वो डाकू सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। उस संगीत में एक ऐसी निरवता, एक ऐसा माधुर्य, एक ऐसी मधुरिम शांति कि वो अशरीरी हो जाते हैं। वो उसे उसका सारा पैसा लौटा देते हैं और उसे अपना पैसा भी दे देते हैं और बाहर छोड़ जाने का रास्ता भी बताते हैं। गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से पूछता है हमें क्या अपने पास रखना है, तब गुरु ये कहानी सुनाता है और कहता है परमात्मा प्रेम का संगीत हमारे पास हो। और वो निरंतर हम गाते रहे, वो बजता रहे भीतर एक धुन की तरह। संसार में शब्दों की कमी नहीं है, प्रकंपन की कमी है। वक्ता नहीं ट्रांसमीटर भव, जो क्या करे किरणें, जहां प्रभु प्रेम भीतर बज रहा है वह स्वतः ही अपने आप प्रसारित होगा। तो सबसे पहली पॉइंट बताई प्रभु प्रेम मोहब्बत, दूसरा बताया मर्ज्ड या कंबाइंड, सदा क्या करना है उसके साथ कंबाइंड रहना है। तीसरा मूव, मूवमेंट अर्थात फॉलो फादर, किसका उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का। बहुत सारी चीजें उसमें आई है, बाबा ने कैसे किया प्रत्यक्ष बाप को, चलन से, चेहरे से, नैनों से, मस्तक से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, कृति से, संकल्प से, सूरत से, मूर्त से, बोल से, कर्मों से। लंबा पैराग्राफ है, हर जगह अलग 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 लिखा है। पर ये सब करने से पहले क्या किया, बाप को अपने अंदर समाया और फिर प्रत्यक्षता की, फिर साक्षात्कार कराया। इसमें दो बातें, एक है स्वयं साक्षात्कार करने की इच्छा है, किस किस को है साक्षात्कार, और दूसरा है साक्षात्कार कराना। साक्षात्कार करने की इच्छा अर्थात भक्ति, साक्षात्कार कराना अर्थात कर्तव्य। क्या साक्षात्कार, रोज भगवान से मिलन हो रहा है, उसके सामने साक्षात्कार फीके है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे करो, फॉलो अर्थात नकल करना नहीं है। जैसे वो है पारदर्शिता, जब तुम बोलते हो या बोलता है बोलते हो तो लोगों को अनुभव हो कि परमात्मा शक्ति बोल रही है, लोग हम में ना देखे। पर्सनैलिटी नहीं, प्रेजेंस, केवल व्यक्तित्व नहीं, ये मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धिमत्ता है, मैं बताता हूं, इसके पीछे जो स्रोत है, जो सोर्स है, लोग उससे जुड़े। जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। तो हर चीज में क्या नजर आए, वो निराकार, इसको क्या कहा बाबा ने, फॉलो फादर। फादर यही थे इसी संसार में सबके सामने, या फिर दादी दीदी मम्मा, ये सबके उदाहरण है। ये कहीं छोड़कर नहीं गए थे किसी वन में किसी पहाड़ पर, सबके बीच रहते हुए ही तपस्या की। चौथा, मनसा सेवा। क्या कहा मनसा सेवा के लिए, क्या कहा? और किरणें फैलाओ, योग युक्त होकर सेवा करो। और कैसी मनसा सेवा, ज्वालामुखी योग। अमृत वेला क्या करते हो, अमृत वेला उठते हो, बाबा से रूरियान करते हो, बातें कर, अपने जीवन की बातें शेयर करते हो, परंतु यह ज्वालामुखी योग नहीं है। ज्वाला आग, अग्नि स्वरूप, तीनों ही जगह करना है, एक स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। यहां पर भी विजुअलाइजेशन जैसे अग्नि की किरणें आ रही है, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में है, पूर्ण स्वरूप में, फरिश्ता रूप में, उसमें शिव बाबा की प्रवेशता, बाप दादा सामने है, आंखों से अग्नि की किरणें आ रही है, मैं स्वयं भी फरिश्ता स्वरूप में हूं, और सब कुछ भस्म हो रहा है, भय चिंता डर संस्कार आग। संस्कारों का क्या करो, संस्कार, हर दिन एक एक संस्कार पर काम करो, टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक संस्कार को खत्म करो, नाश करो। उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा संस्कार है, रोने का है, दुखी होने का है, उदास होने का है, ओवर थिंकिंग का है, किसी ने कुछ कहा 10 मिनट कहा और हमारे 10 घंटे चले गए, 10 दिन चले गए, 10 साल चले गए। हर एक के अपने अपने संस्कार है और हर एक को उस पर काम करना हो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर उसके ट्रिगर्स ढूंढना, कौन सी बात होती है तो वो संस्कार एक्टिवेट होता है। वो कोई भी संस्कार होता है, किसी ने एक बहुत सुंदर चित्र भेजा, आज भोजन की थाली है, उसमें दाल रोटी सब्जी भी रखी है और एक जगह मोबाइल भी रखा हुआ है। वो अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना थाली के, उसमें एक मोबाइल का सेक्शन बना है, वो वहां रखा है, खाते समय देखते रहना, क्योंकि खाने में तृप्ति नहीं है, इसलिए उस तृप्ति की खोज में किसी और चीज को जोड़ा जा रहा है जो उसे तृप्त संतुष्टता जिससे अनुभव हो, बेचैनी है। इस मुरली में यह भी कहा है, संतुष्टता की किरणें फैलाओ, निमित्त आत्माओं के लिए कहा है, जो कार्य हम करें उसमें तृप्ति संतुष्टता का अनुभव हो, एकाग्रता का अनुभव हो, प्रेम से उसको करना। तो क्या करो, मनसा सेवा, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, एटलीस्ट 3 टाइम निश्चित करना है, सुबह का तो है ही, शाम का भी है, दोपहर का भी एक, क्योंकि इसी मुरली में कहा है हालत बदलनी है। अभी अभी नेपाल तिब्बत में जो भूकंप हुआ, उसकी जो डेड बॉडीज है अनआइडेंटिफाइड, पता नहीं ये किसकी डेड बॉडीज है, इतनी डिकम्पोज हो गई है, अभी सरकार उन डेड बॉडीज को दफनाने की प्रोसीजर चालू है, पर दफनाने से पहले डीएनए सैंपल लिया जा रहा है कि अगर ये किसका है पता ही नहीं। 4,000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, कहाँ चले गए कुछ खबर नहीं है, 700 के ऊपर तो मृत घोषित हो चुके हैं, 3,000 लोग कहाँ है पता नहीं, और ढेर सारी डेड बॉडीज आ रही है, मास ब्यूरियल चल रहा है, एक जंगल एक फॉरेस्ट में उनको क्या किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि कोई रिश्तेदार ढूंढे या कुछ हो, ये कार्य चल रहा है। एक ही तत्व यदि आक्रामक हो जाए तो ये हाल होता है। पांच तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, पांच तत्व, पांच विकार, माया के 10 खिलाड़ी, फिर क्या करेंगे? तो प्रैक्टिस कब से चाहिए? अब से, आश्चर्यपन की, प्रभु प्रेम की, उस कंबाइंड स्वरूप की। और हमें क्या करना है? मनसा सेवा क्यों करनी है? दो कारणों से। एक तो आत्माओं को किरणें फैलाओ, किरणें देनी है सुख की, शांति की, पांचों तत्वों को किरणें देनी है। प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति को वश में करना नहीं, ये शरीर ही प्रकृति है, इसको जीतना अर्थात प्रकृति जीत। प्रकृति को सकाश देनी है, आत्माओं को सकाश देनी है, भक्तों को सकाश देनी है, और बढ़ाओ और शक्तिशाली करो, किरणें डालो, मुरली में शब्द आया है। और दूसरा ज्वालामुखी योग किस लिए? स्वयं के संस्कारों को चलाने के लिए। इसलिए अधिक से अधिक समय तो हम ज्वालामुखी योग की बात कर रहे थे, एक तो यहां स्थूल वतन में, एक सूक्ष्म वतन में, और एक परम धाम में। किरणें आ रही है और विकार, भोग की स्मृतियां, भय नष्ट हो रहा है। ये एक आंतरिक साधना चालू रहे, बाहर सब कुछ करते हुए, सारी सेवाएं करते हुए, भीतर ही भीतर ये साधना। तो चौथा है मनसा सेवा, पांचवा मधुबन निवासी। क्या कहा मधुबन और मधुबन निवासियों के लिए? बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहले तो समर्पण किया है, नशा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, सेवाएं करते हैं, मर्यादा पूर्वक चलते हैं, सुबह से लेके रात तक श्रीमत का पालन करते हैं, तो उसके भी एक्स्ट्रा पुण्य है। और फिर आत्माओं की सेवा, ब्राह्मण और जो नए आते हैं उनकी सेवा, उसका पुण्य। निमित्त आत्माएं के विषय में कहा, कुछ बातें होती है तो क्या करो? पहुंचा दो, सुना दो, बता दो, और खुद क्या हो जाओ? साक्षी, निश्चिंत। इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, अंग्रेजी में कहावत है, यदि मन की शांति चाहिए, रिजाइन एज द मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये नहीं समझो कि सब कुछ मुझे ही करना है, मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही बॉस हूं, इससे रिजाइन कर दो। बहुत सी चीजें होगी जो आत्माओं के हिसाब चुकत हो रहे। हम हर चीज में इंटरफियर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो स्वयं दुखी होंगे। इसलिए साक्षी की साधना, साक्षी साधना भी है और लक्ष्य भी है, दोनों साथ साथ चलता रहे। तो ये भी कहा, और क्या कहा? मधुबन वालों के लिए एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है, और क्या होता है? और क्या कहा मधुबन वालों के लिए? बाबा कहाँ आते हैं? मधुबन में। ये भूमि कौन सी है? निमित्त भूमि है, जिसमें क्या होता है? बाबा आते हैं, आत्माओं से मिलते हैं, आत्माएं मिलती है, आत्माओं को मिलाते हैं। तुम क्या करते? आत्माओं को मिलाते हो। ये वो भूमि है, ये वो श्रेष्ठ भूमि है। तो जब यहां आए हैं तो यहां से पुण्य जमा करके जाना है। एक का 100 गुना पुण्य है तो एक का 100 गुना पाप भी है। अगर यहां आकर कोई विकर्म करता है तो फिर यहां की चीजों को बर्बाद करता है, यहां के रिसोर्सेस को बर्बाद करता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, भोजन, डीजल, पेट्रोल, या नुकसान करता है, तो फिर क्या कहेंगे? अपनी ही गलतियों से कोई बार बार बीमार पड़ता है, उसको भी बाबा ने क्या कहा है? ज्ञानी योगी नहीं है, जो स्वयं के शरीर को नहीं चला सकते वो राज्य को कैसे चलाएंगे। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। सारी चीजों का ध्यान। तो मधुबन वालों से मुलाकात की, मधुबन वालों की महिमा की, अटेंशन दिलाया। लोगों की मधुबन के प्रति क्या है? भावना है। उस भावना का ध्यान रखना है। तो यहां सेवाएं करते हुए हमारे वजह से कोई विकर्म ना हो, कोई पाप ना हो जाए। यहां आए थे पुण्य कमाने और पाप का बोझा लेकर जा रहे हैं, तो क्या कहें। तो मधुबन वातावरण बनाने के लिए कहा। एक मछुआरा मछली पकड़ने लगता है, अपना कांटा डालता है, कितना देर तक खड़ा रहता है पर एक भी मछली नहीं पकड़ में आती है। उसे आश्चर्य होता है कि शायद इस तालाब में मछली ही नहीं है। वो बाजू होकर देखता है तो देखता है वहां तो बहुत सारी मछलियां है पर पकड़ में क्यों नहीं आ रही है। एक राहगीर वहां खड़ा होकर देखता है, कहता है क्या हुआ? वो कहता है मैं कब से कांटा डाल के हूं पर एक भी मछली पकड़ में नहीं आ रही है और मछलियां तो इतनी सारी है। वो राहगीर कहता है तुम यहां मछली मत पकड़ो, कहीं और चले जाओ। वो कहता है क्यों? वो राहगीर कहता है कुछ समय पहले एक संत महात्मा यहां आए थे, वो नदी के तट पर उस ओर बैठ के प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने एक मौन पर प्रवचन दिया कि जब तुम मौन रहोगे तो व्यर्थ परिस्थितियों में अननेसेसरी बातों में फंसने से बच जाओगे। शायद इन मछलियों ने उसका वो प्रवचन सुन लिया, इसलिए मछलियां अब अपना मुंह नहीं खोलती। वो संत इतने पहुंचे हुए संत थे कि उसके प्रवचनों का प्रभाव इन मछलियों पर भी पड़ गया। अब मछलियां भी मौन रहना सीख गई है। कांटा में तो पकड़ी तब जाएगी जब मुंह खोलेगी, ये मुंह ही बंद रखती है तो कांटे में कैसे फंसेगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम कहीं और चले जाओ। तो जब मनुष्य बोलते हैं तो प्रभाव वातावरण, पशु पक्षी सब पर पड़ता है, पंछियों पर पड़ता है। द्वापर से सतयुग में कोई हिंसक नहीं था क्योंकि आत्माएं अहिंसक थी। द्वापर की शुरुआत से राजाओं ने आखेट खेलना चालू किया। क्या करते थे? आखेट, शिकार मारते थे। धीरे धीरे पशु भी क्या बन गए? हिंसक बन गए। पहले वो हिंसक थोड़ी थे, नहीं थे। किसी ने पूछा इन जानवरों का परमपिता कौन है? उत्तर है तुम, क्योंकि जब तुम पावन बनोगे तो ये भी पावन बन जाएंगे। उनका क्या होगा? सब कुछ हम पर है। अगला पॉइंट है मम्मा दीदी दादी और पांडव। मम्मा का स्लोगन कहना और बाबा का कहना और मम्मा का करना। अब घर जाना है दीदी दादी कर्मातीत और पांडव विजयी। कौरवों ने कितने षड्यंत्र किए, बचपन से षड्यंत्र ही करते आ रहा दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या किया बचपन से? केवल षड्यंत्र, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, पर हर षड्यंत्र के बाद पांडव और विजयी होकर जीत कर आए। वास्तव में पांडव के विजयी होने का श्रेय दुर्योधन को ही जाता है। अगर उसने षड्यंत्र नहीं किए थे तो इतने प्रसिद्ध भी नहीं होते। इसलिए ये मत समझो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं वैसा क्यों करते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं। विघ्न आएंगे पर हम कौन है? विजयी पांडव, विजयी शक्ति। और लास्ट पॉइंट है मनी, सहयोग के नोट्स। हमारे जेब में क्या हो? सहयोग के नोट, गलतियों की डायरी नहीं। तो दुआओं की मालाएं पहनाई जाएगी। तो ऐसी ये 7 पॉइंट, जहां जिसको सहयोग की आवश्यकता है सहयोग दो। इसलिए नहीं कि उससे कुछ मिले हमको, क्योंकि सहयोग देना हमारा स्वभाव है। मधुबन अर्थात मधुबन निवासी अर्थात अपने भाग्य को प्रत्यक्ष करो। ऐसे कैसे? पवित्रता की क्षमा को अचल रखने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी आत्माओं को सोचना और करना एक, ऐसे आलस्य को समाप्त करने वाली आत्माओं को कैसे समाप्त करने वाली, उल्लास की कमाई करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे प्रभु प्रेम को अपने हृदय में रखने वाली आत्माओं को, दिल में दिलाराम को बसाने वाली आत्माओं को, ऐसे फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे विश्व को प्रकाश देने वाली आत्माओं को, ज्वालामुखी योग करने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे सहयोग के नोट्स अपने जेब और अपनी पर्स में भर के रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने, मर्यादा पूर्वक श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे चेहरे चलन, चेहरा चलन, आंखें, मुख, दृष्टि, मस्तक, सूरत, मूरत, दृष्टि, बोल, संकल्प, कर्म, संस्कारों से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, बाप का परिचय देने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप का साक्षात्कार कराने वाली आत्माओं को, ऐसे फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे कंबाइंड हो गया, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को, समर्थि स्वरूप आत्माओं को, ऐसे दिलाराम को रख लिया दिल में, ऐसे मधुबन निवासियों को, सभी कौन है मधुबन, परमानेंट एड्रेस वो, टेम्परेरी एड्रेस ये, ऐसे फॉलो फादर हो गया, ऐसे सतयुग, ऐसे सहयोग के नोट्स रखने वाली आत्माओं को, दूसरों की गलतियों को नोट नहीं करने वाली आत्माओं को, दूसरों की दुआओं का हार पहनने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट ताकि किरणें फैलाने वाली आत्माओं को और शक्तिशाली बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सोचना कहना हो गया, ऐसे मौन में रहने वाली आत्माओं को और कांटे में फंसने न वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।